ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति द्वारा पार्टी के हित के विपरीत काम करने के आरोप में दो महामंत्री सहित तीन पदाधिकारियों के खिलाफ अनुसंधानात्मक कार्रवाई। स्वजागरण अभियान से देश में सुशासन कायम करने में मदद मिलेगी, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का विश्वास। आगामी फागुन 21 को प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव के लिए सरकार द्वारा आवश्यक शांति सुरक्षा सुनिश्चित करने का गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल का बयान। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या पहुंची 32। नेपाली कांग्रेस की आज हुई केंद्रीय समिति की बैठक ने पार्टी के हित के विपरीत कार्य करने के आरोप में तीन पदाधिकारियों के खिलाफ अनुसंधानात्मक कार्रवाई की है। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय सानेपा में हुई बैठक ने दो महामंत्री गगन कुमार थापा और विश्व प्रकाश शर्मा तथा सह महामंत्री फर्मुला मंसूर को पार्टी अनुशासन उल्लंघन के आरोप में पार्टी की धारणा साधारण सदस्यता से हटाने के हिसाब से निष्कासित कर दिया है। पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्ण बहादुर खड़का की अध्यक्षता में हुई बैठक ने पार्टी के विधान और हित के विपरीत गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर 5 वर्ष के लिए निष्कासन का निर्णय किया है। ये जानकारी नेपाली कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा ने दी। केंद्रीय समिति ने आरोप लगाया है कि महामंत्री थापा और शर्मा तथा सह महामंत्री मंसूर ने कांग्रेस के विशेष महाधिवेशन पक्ष द्वारा आह्वान किए गए विशेष महाधिवेशन का नेतृत्व करते हुए नए नेतृत्व चयन के लिए चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में संलग्न थे। वहीं दूसरी ओर पिछले रविवार से काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में जारी विशेष महाधिवेशन के बंद सत्र में नए नेतृत्व चयन के लिए चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ी है। विशेष महाधिवेशन ने सभापति और महामंत्री के पदों पर निर्णय कर लिया है। सभापति पद के लिए गगन कुमार थापा तथा महामंत्री पद के लिए प्रदीप पौडेल और गुरुराज घिमिरे का ही मनोनयन होने के साथ ही इन पदों पर अंतिम फैसला हो गया है। अन्य पदाधिकारियों और केंद्रीय सदस्यों की नामावली भी तय किए जाने के बाद थापा के नेतृत्व में नई कार्य समिति की घोषणा की तैयारी की जा रही है। विशेष महाधिवेशन आयोजक समिति के अनुसार देर रात तक कार्य समिति का चयन कर उसे कल निर्वाचन आयोग में प्रस्तुत करने की तैयारी है। नेपाली कांग्रेस में पार्टी का 15वां अधिवेशन फागुन 21 की प्रतिनिधि सभा के चुनाव से पहले करे या चुनाव के बाद करे, इस विषय से शुरू से हुए पार्टी के आंतरिक विवाद ने अंततः पार्टी विभाजन के बिंदु पर पहुंच गया। चुनाव से पहले पार्टी का नियमित अधिवेशन न हो सकने के बाद एक पक्ष द्वारा बुलाए गए विशेष महाधिवेशन में आज नए नेतृत्व चयन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जबकि दूसरे पक्ष ने विशेष महाधिवेशन में लगे पार्टी के तीन पदाधिकारियों को पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय लिया है। विशेष महाधिवेशन शुरू होने के बाद से ही विवाद समाधान के लिए विभिन्न स्तरों और समूहों में चर्चाएं भी हुई थी। चुनाव से पहले पार्टी का नियमित अधिवेशन न हो सकने के कारण एक पक्ष द्वारा बुलाए गए विशेष महाधिवेशन में आज नए नेतृत्व चयन की प्रक्रिया शुरू हुई, जबकि दूसरे पक्ष ने विशेष महाधिवेशन में शामिल पार्टी के तीन पदाधिकारियों को पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय लिया था, लेकिन क्रमबद्ध चर्चाओं के बाद भी सहमति न बन पाने के कारण दोनों पक्षों ने अपने अपने रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। साथ ही लंबा इतिहास रखने वाली नेपाली कांग्रेस पार्टी औपचारिक रूप से विभाजन के रास्ते पर बढ़ चुकी है। नेपाल प्रेस यूनियन ने देश और लोकतंत्र के भविष्य पर ध्यान देते हुए नेपाली कांग्रेस के नेताओं से एकता की यात्रा तय करने का आग्रह किया है। प्रेस यूनियन के अध्यक्ष शिव लम्साल ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कांग्रेस के भीतर एकता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि संविधान और लोकतंत्र के भविष्य के लिए नेपाली कांग्रेस जैसे लोकतांत्रिक दलों की एकता आवश्यक है। प्रेस यूनियन ने यूनियन से जुड़े देशभर के पत्रकारों से विचलित हुए बिना एकता के पक्ष में अपनी राय व्यक्त करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की उपस्थिति में आज प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय सिंह दरबार में सुशासन और समृद्धि के लिए स्व जागरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्की ने विश्वास व्यक्त किया कि स्व जागरण अभियान नैतिकता, सदाचारिता और सेवा भाव से युक्त जनशक्ति का निर्माण कर देश में सुशासन की स्थापना में सहायक होगा। विभिन्न कालखंडों में देश में हुए विभिन्न सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों तथा नई पीढ़ी द्वारा सदाचार और सुशासन की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब स्व जागरण को भी सभी स्तरों पर संस्थागत कर दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना अपरिहार्य हो गया है। प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि स्व जागरण केवल आध्यात्मिक अभ्यास मात्र नहीं बल्कि ये आंतरिक रूप से व्यक्ति को खुश और शांत रहना सिखाती है तथा बाह्य रूप से जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ और समृद्ध समाज के निर्माण में सहायक एवं प्रयोगात्मक जीवन पद्धति का हिस्सा बनाती है। ये जानकारी प्रधानमंत्री के सचिवालय ने दी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने बताया है कि आगामी फागुन 21 को होने वाले चुनाव को सफल बनाने के लिए सरकार ने मजबूत शांति और सुरक्षा व्यवस्था कायम करने की दिशा में आगे बढ़ गई है। गृहमंत्री अर्याल ने संघीय गृह मंत्रालय और मध्य प्रदेश के गृह संचार तथा कानून मंत्रालय के संयुक्त आयोजन में मध्य प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी का आज जनकपुर धाम में उद्घाटन करते हुए कहा कि नेपाल सरकार चुनाव को सफल बनाने, शांति और सुरक्षा स्थापित करने तथा निर्वाचन आयोग को आवश्यक हर प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है। गृहमंत्री अर्याल ने कहा कि प्रतिनिधि सभा के चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने में सुरक्षा बलों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसलिए सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत विधान व्यवस्थापन समिति में चर्चा के दौरान पर्यटन विधेयक 2081 में पर्वतारोहण और व्यावसायिक अनुमति, नवीकरण आदि प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर सांसदों के बीच सहमति बनी है। आज सिंह दरबार में समिति की बैठक में 3 स्टार तक के होटलों के अनुमति, नवीकरण आदि का प्रबंधन का दायित्व प्रदेश सरकार को देने के लिए विधेयक में संशोधन करने पर सांसदों ने सहमति दी है। साथ ही अन्य होटल व्यवसाय पंजीकरण, अनुमति, नवीकरण और रद्द की जिम्मेदारी स्थानीय सरकार को ही होगी, ऐसा संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है। बैठक में संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस पर्यटन विधेयक के बारे में सर्वसम्मति समिति जो भी निर्णय करेगी वो सरकार के लिए स्वीकार्य होगा। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी के संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने चुनाव प्रचार को जनता के घर आंगन अभियान पर केन्द्रित करने की बात कही है। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी और राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल एकता पक्षधर के समायोजन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को चुनाव में अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए सूचना प्रविधि के उपयोग पर जोर देने की नीति पार्टी द्वारा अपनाई जाएगी। संयोजक प्रचंड ने अतीत में की गई गलतियों को न दोहराने का वचन देते हुए चुनाव प्रचार में जुटने के लिए संपूर्ण पार्टी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया। सहसंयोजक माधव कुमार नेपाल ने कहा कि पार्टी को जनता की आशा और विश्वास का केंद्र बनाने की चुनौती है और इसका सामना करके ही आगे बढ़ना होगा। सूचना तथा संचार प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने देश और जनता के हित में जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने के लिए गोरखापत्र संस्थान के नेतृत्व को निर्देश दिया है। मंत्रालय में आज गोरखापत्र संस्थान के नवनियुक्त अध्यक्ष गोविंद भंडारी अखंड को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए मंत्री खरेल ने इतिहास संजोए इस संस्था गोरखापत्र की शाखा मजबूत करने के लिए कार्य करने का निर्देश दिया। संचार मंत्री खरेल ने नेपाली पत्रकारिता के ऐतिहासिक संस्था की जिम्मेदारी कुशलतापूर्वक निभाते हुए देश और जनता के हित में कार्य करने का विश्वास व्यक्त किया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। पुलिस के अनुसार इस दुर्घटना में 66 लोग घायल हैं, जिनमें से 7 की हालत गंभीर है। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के समय ट्रेन में 171 लोग सवार थे। ये दुर्घटना तब घटी जब बुधवार सुबह चलती ट्रेन के एक डिब्बे पर निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली ट्रेन गिर गई। थाईलैंड सरकार ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उधर इतावली थाई डेवलपमेंट पब्लिक कंपनी लिमिटेड ने दुर्घटना पर खेद जताया है और मारे गए और घायल लोगों के परिजनों को मदद व मुआवजे की घोषणा की है। थाईलैंड और चीन के बीच रेलवे लिंक बनाया जा रहा है और चीन की सरकार ने कहा है कि हादसे वाले सेक्शन को एक थाई कंपनी बना रही थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति द्वारा पार्टी के हित के विपरीत काम करने के आरोप में दो महामंत्री सहित तीन पदाधिकारियों के खिलाफ अनुसंधानात्मक कार्रवाई। स्वजागरण अभियान से देश में सुशासन कायम करने में मदद मिलेगी, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का विश्वास। आगामी फागुन 21 को प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव के लिए सरकार द्वारा आवश्यक शांति सुरक्षा सुनिश्चित करने का गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल का बयान। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर पहुंची 32। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।